एवं कर्मसु संशक्तः कामात्मा वंचितो बुधः कामात्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदेहेत तत्तदेवावन तत्तदेवान्ववर्तत एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदेहेत तत्तदेवान्ववर्तत एवं इस प्रकार कर्मसु कर्मों में संसक्तः अत्यंत आसक्त कामात्मा कामी वंचितः ठगा गया अबुधः अल्पज्ञानी महिषी पटरानी यत्यत जो जो इहेत चाहती थी तत्तत वही वही एव निश्चय ही अनुभवर्तत पालन करता था। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक ऊहापोह तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वह दरअसल ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। दोहराएंगे, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक ऊहापोह तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वह दरअसल ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। तात्पर्य, जब जीव इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह अपनी पत्नी या भौतिक बुद्धि के वशीभूत हो जाता है तो उसे अपनी तथा कथित पत्नी की बुद्धि की तुष्टि करनी पड़ती है और इसी के आदेशानुसार कार्य करना होता है। विभिन्न शास्त्रों का उपदेश है कि भौतिक सुविधा के लिए ही लिए मनुष्य को चाहिए कि आभूषण प्रदान करके तथा उसके समस्त आदेशों का पालन करते हुए अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखे। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में किसी तरह की परेशानी न होगी। अतः अपने सामाजिक हित के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखे। इस प्रकार जब वह अपनी पत्नी का दास हो जाता है तो उसे पत्नी के इच्छा अनुसार कार्य करना होता है। इस प्रकार वह अधिकाधिक फंसता जाता है। बंगाल में कहावत है कि जो अपनी पत्नी का आज्ञाकारी दास बन जाता है वह अपनी ख्याति खो देता है। किंतु कठिनाई तो यह है कि जब तक पत्नी का दास बना जाए तब तक पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त रहता है। पाश्चात्य देशों में इसी उपद्रव के कारण तलाक विवाह विच्छेद का कानून जन्म लेता है और भारत जैसे पूर्वी देशों में संबंध विच्छेद चालू है। अब भारत में तलाक का नया कानून चालू हो जाने से इस उपद्रव की पुष्टि हो जाती है और अंतःकरण के भीतर मन कार्य करता है, सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा करता है और अपनी पत्नी के वश में होने का अर्थ है भौतिक बुद्धि के वश में होना। इस प्रकार मनुष्य अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करता है और मानसिक आडंबर के वश में आकर अनेक प्रकार के कार्यों में फंस जाता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महिषी यद्यदि हेत तत् देवान्ववर्तत। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक ऊहापोह तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि के वश में हो गया और ठगा गया। वह दरअसल ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया करता था। तो पुरंजन पुराण जनयति इति पुरंजनः, पुर माने शरीर, शरीर को उत्पन्न करने वाला। तो शरीर को कैसे उत्पन्न करेगा? जब कर्मों में फंसेगा, तो जब कर्म करेगा अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को करेगा तो उन कर्मों के अनुसार ही शरीरों की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर इस पुरंजन उपाख्यान में यही बताया गया है। आप लोगों ने अध्याय के पूर्व में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वो सब जितने श्लोक हैं उसमें बताया था कि पुरंजन के साथ में उसका एक सखा रहता है अविज्ञात नामा। क्यों? क्योंकि उसको जानता नहीं तो उसका नाम ही हो गया अविज्ञात नाम। उसका नाम का पता नहीं क्या है वो हम लोग उसको परमात्मा कृष्णा ऐसा कहते हैं। तो वो उसका सखा है जो उसके साथ जब से सृष्टि है तब से रह रहा है, परंतु इतना दुर्भाग्य है कि वो उसको नहीं जानता। मनुष्य का भगवान के साथ में जो संबंध है, एक तो सख्य संबंध, साकेत्य संबंध, सायुज्य संबंध, ये जो संबंध है ये भगवान से नित्य संबंध है हमारा। भगवान हमारे साथ सखा के जैसे हृदय में सदैव रहते हैं, एक ही स्थान में रहते हैं तो साकेत्य संबंध है ना। एक ही वृक्ष की डाल में रहते हैं तो एक ही स्थान, इसलिए साकेत्य संबंध है। यह आत्मनितिष्ठति वेद कहता है कि जो आत्मा में रहता है भगवान में ही रहता है, इसलिए सायुज्य संबंध है। तो इस प्रकार से एक देश एक स्थान में रहने के कारण से ये जीव जो है भगवान का सखा है। और यहां पर पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो अविज्ञात नामा मतलब भगवान परमात्मा के रूप में जो है ये इसका साथी है। और यहाँ पर जो बुद्धि की बात है ये उसकी पत्नी हो गई, बाकी जितने भी उसके पुत्र आदि हैं सब उसकी जो बुद्धि की वृत्तियां हैं उससे जो उत्पन्न होंगे, जो कार्य उत्पन्न होते हैं बुद्धि से, बुद्धि सात्विक राजस तामस तीन प्रकार के होकर के जो कार्य करती है उससे जो जो उत्पन्न होते हैं संसार में वो सब यहाँ पर बुद्धि के मतलब पुरंजन के और उसकी बुद्धि मतलब उसकी पत्नी के पुत्र के रूप में है। तो इस प्रकार से जो पहले बताया गया था कि ये नौ द्वारों वाला देह जिसको उसने हिमालय के पास में देखा था, तो ये इसी देह को लेकर के बता रहे थे। इसमें नौ द्वार हैं, सात ऊपर हैं, दो नीचे हैं। तो ये नौ द्वार वाले देह जो कि उत्तम है, इसमें अलग अलग तरीके से बताया कि यहाँ पर चौराहा है तो ये है तो वो है, वो केवल कथा की सौष्ठव के लिए सुंदरता के लिए ये सब वर्णन कर दिया कि चौराहा है, मुख एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कान इस तरफ है तो एक चौराहा हो गया, तो ऐसे शरीर को प्राप्त किया। तो वस्तुतः ये जितनी भी बातें हैं ये सब केवल शरीर की सुंदरता का जो वर्णन किया, अंदर तो सब गंदगी भरी पड़ी है, फिर भी बड़े अच्छे से बताया कि एक महल में क्या क्या स्थितियां होती हैं, उस महल से उस पुर से इस शरीर की तुलना किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों ने इतने दिनों तक सुना कि पुरंजन किस प्रकार से अपनी बुद्धि में आसक्त होकर के, बुद्धि मतलब पत्नी में, क्योंकि एक स्वाभाविक नियम है कि जो पुरुष है वो प्रकृति पर ही आसक्त होता है, प्रकृति कभी भी पुरुष में आसक्त नहीं होती है। सांख्य में भी ऐसा ही है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, उसको पुरुष धकेलता है, क्रियावान क्रियाशील बनाता है, क्योंकि प्रकृति में अपने आप में किसी प्रकार से कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं है, उसको पुरुष उसको प्रेरित करता है तब वो जाकर के प्रकृति काम करती है। ऐसे ही ये बुद्धि जड़ है, इस बुद्धि में जब आत्मा का जो चेतन गुण प्रतिबिंबित होता है, प्रकाशित होता है, तो दोनों बिल्कुल ऐसा घुल मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि आत्मा को, इसलिए वो अपने शरीर को ही मैं कहने लगता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं शरीर हूं। वो बुद्धि के जितने भी गुण हैं वो सब आत्मा में आ जाते हैं, आत्मा के जो गुण है वो बुद्धि में आ जाते हैं। तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि जो बुद्धि के पीछे पीछे मतलब जो उसकी पत्नी जैसा जैसा करती है ऐसा ही ऐसा पुरंजन कर रहा है। तो हमारी बुद्धि जैसा हमको सिखाती है, हम तो इसमें पैसेंजर है, इस रथ में हम पैसेंजर हैं, यात्री हैं, अब बुद्धि सारथी है। अब हमारी बुद्धि सात्विक राजस तामस जैसी होगी उसी के अनुसार हमको लेकर के जाएगी। सात्विक बुद्धि है, शास्त्र के अनुसार चलने वाली बुद्धि है तो हमको सही दिशा में ले जाएगी, तामसिक राजसिक बुद्धि है तो गलत स्थान पर लेके चली जाएगी। तो ऐसे ही हमको अंधाधुंध अनुसरण नहीं करना अपनी बुद्धि का, उसको शास्त्र के अनुसार विचार करके, संतों के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार विचार करके बुद्धि को लगाना, उसके पीछे पीछे जाना है। क्योंकि ये जो बुद्धि है, मन है, ये यंत्र है, हमको दिया गया ये यंत्र जिसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये जड़ है लेकिन बड़े काम की चीज है, क्योंकि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है भजन करने का, भगवान को समझने का। तो इसीलिए यहां पर अंध के जैसे अपनी बुद्धि का अनुसरण नहीं करना चाहिए, शास्त्रों और संतों के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपनी बुद्धि को प्रेरित करना चाहिए। इसीलिए भगवद गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझ में मन लगाओ, अब बुद्धि मई निवेश है न मई आदत सो मना, और मुझ में मन को लगाओ और बुद्धि को मुझ में निवेशित करो, तो कौन करेगा, ये मैं करूंगा, मतलब मैं भगवान का जो आत्मा अंश दास, वो बुद्धि और मन को सही स्थान पर लगाएंगे तभी जाकर के काम बनेगा। तो यहां पर ये जो यहां पर ये इतना सारा वर्णन चल रहा है, तो इसीलिए प्रकृति जड़ है, पुरुष ही में सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इस समय भी यदि संसार में देखेंगे तो स्त्रियां बिगड़ती हुई यदि दिखाई पड़ रही हैं, तो वो केवल और केवल पुरुषों के कारण से, जितनी भी गंदगी आपको सुनाई पड़ती है दुनिया में वो केवल पुरुष प्रेरित करते हैं। स्त्रियां अपने आप में उसका स्वाभाविक धर्म है लज्जा, लेकिन ये पुरुषों ने उनको प्रेरित करके रखा है, इसके कारण से इतने उपद्रव हो रहे हैं। और फिर जब उनको प्रेरित कर दिया जाता है तो फिर वो अपना उपद्रव दिखाती हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि संसार में जितने भी अभी स्त्रियां यदि गंदे कपड़े पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, उनके पीछे हाथ किसका? स्त्रियों का नहीं है, पुरुषों का हाथ है। वो डिजाइनर बने हुए हैं, वो चाहते हैं स्त्रियों को ऐसे गंदे कपड़ों में देखना। अपने कामात्मा वो है और वो स्त्री को अपने भोग के लिए प्रयोग करता है। और इसलिए विविध प्रकार के फिर स्त्रियों की भी मेंटेलिटी उनके साथ रहते रहते संघ में आकर के वैसी बन जाती है। तो इसलिए यहां पर पुरंजन को कहा गया कि कामात्मा, काम से प्रेरित हुआ कामी जो पुरंजन है वो वंचित हो रहा है, ठगा जा रहा है। किससे? स्त्री से। वास्तव में यहां पर जिस स्त्री की बात चल रही है और जो प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में लिखा है कि स्त्रियों को आभूषण आदि से प्रसन्न करके, केवल समाज में एक ये दिखावा है, ये जैव धर्म नहीं है। स्त्री को प्रसन्न करना, पुत्रों को प्रसन्न करना, माँ बाप को प्रसन्न करना, ये एक धर्म मात्र है, एक शारीरिक धर्म है। ये तो बदलता है, अनंत जन्म में अनंत बार बदला। तो इसलिए ये वास्तविक धर्म नहीं है, ऐसा प्रयास जो शास्त्र है उन्होंने कर दिया है कई स्थानों पर, लेकिन वस्तुतः इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। केवल उस घर के कला को बचाने के लिए ऐसा लिखा गया है कि स्त्री प्रसन्न रहेगी तो खूब काम करेगी, मतलब घर की गधी बनाने के लिए ऐसा है सब हिसाब, घर का खूब काम कराने के लिए। जब खूब काम करेगी, उसको खूब सोना दोगे, चांदी दोगे, कपड़ा दोगे तो और काम करेगी। कोई स्त्री पुरुष की दासी नहीं है, ना पुरुष किसी स्त्री का दास है, सब भगवान के दास है। वास्तविक संबंध का बार बार चिंतन न होने कारण से ये वर्णाश्रम धर्म को ऐसा फैलाना पड़ता है। अब वस्तुतः इससे कल्याण किसी का नहीं है। तो इसीलिए यहां पर जो पुरंजन कामात्मा हुआ, वो कामात्मा कैसे हो गया, हमारे अंदर ये काम जागता कैसे है? काम का मूल कारण है अज्ञान। पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो काम है, कामना है, उसका मूल कारण है अज्ञान, और अज्ञान का कारण है माया, और माया का कारण है भगवत बहिर्मुखता। अज्ञान कामना है, कामना किस चीज की है? इंद्रियों को भोगने की, विषयों को भोगने की, उसके लिए हमारे पास इंद्रियां हैं। वो कामना क्यों पैदा होती है? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान क्या है? कि मैं ये शरीर हूं, यही अज्ञान है। सबसे पहली पढ़ाई भी यही है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। यदि पहली आध्यात्मिक जीवन में यदि सबसे पहला क्लास है तो सबसे पहली क्लास है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। लेकिन क्या करें, हमारे माँ बाप ने हमको छोटे जन्म लेते ही गलत सिखा दिया है ना। अरे बेटा, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं, तुम तो यही हो, तुम्हारा नाम पप्पू है, टप्पू है, नाम भी रख दिया और उसी के अनुसार व्यवहार भी चलाना शुरू कर दिया, तो हमारा क्या दोष? तो दोष है हमने जानने का प्रयास नहीं किया। अब हमारी माँ ने हमको ऐसी सिखा दिया कि तुम यही शरीर हो, तुम्हारी यही पहचान है, मैं तेरी माँ हूं। ये कभी नहीं बताया कि हम लोगों का जो संबंध है टेम्पररी है, क्योंकि बिचारी उसको भी नहीं पता है, उसने भी ऊपर से ऐसा ही सुना था। संसार में जितने भी संबंध है वो सब कैसे हैं? क्षणिक हैं। एक तो है ही नहीं, पहली बात तो संबंध। संबंध कहते किसको हैं? जिसके साथ प्रगाढ़ बंधन हो, जिसका वो व्यक्ति पार्ट हो, उसका उसमें संबंध हो सकता है। जैसे जीवात्मा भगवान का अंश है तो वो अंशी है और हम अंश है, तो हमारा उसके साथ संबंध है। जैसे शरीर है, शरीर किसका अंश है? माया का, प्रकृति का, तो इसका अंश ये है, तो इसका अंश, तो इसके साथ इसका संबंध बढ़िया है। और आत्मा का संबंध भगवान के साथ, जैसे समुद्र में उठती हैं लहरें और लहरें उठें और आपस में टकरा करके अपने आप को मान लेते हैं कि हम कुछ हैं, हम दोनों का संबंध है। लेकिन वस्तुतः जो ये वाली लहर है इससे पैदा नहीं हुई, न ये लहर इससे पैदा हुई, दोनों पैदा किससे हुए? समुद्र से। तो जितने भी घर वाले लोग हैं संसार के सब भगवान के ही अंश हैं। इनका सबके साथ भगवान का संबंध है और किसी के साथ है नहीं, बस माना हुआ है, मान लिया बस। अब इस माने हुए संबंध को ही हटाना है, और ये ऐसे अपने आप नहीं जाएगा, उसको बार बार चिंतन करके, बार बार सोच सोच कर कि मैं भगवान का दास हूं, मेरा कृष्ण से संबंध है, ऐसा फीलिंग ला करके लाएंगे तब एक दिन हो जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, अब मेरे को इनकी सेवा करनी है। अन्यथा ये सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक चला जाएगा ऐसा ज्ञान हो जाएगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, ये कोई ऑटोमेटिक नहीं हुआ। भगवत बहिर्मुखता हुई तो माया ने पकड़ा, और जब माया ने पकड़ा तो अज्ञान हुआ कि मैं ये शरीर नहीं हूं, अपने स्वरूप ढक गया, और जब अपना स्वरूप ढका तो ज्ञान हो गया क्या कि मैं ये शरीर हूं। तो ये ज्ञान में जब इतने सारे स्टेज हुए अज्ञान में, तो जब हम भगवान के दास हैं ऐसा ही उल्टा क्रम जाएगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, और जब तक इस बात को सोचेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग सोते जागते हर समय अपने आप को याद करते, अरे मैं बलराम कृपा हूं, अरे मैं मधुसूदन जी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, हम अपने आप को कभी नहीं भूलते ना, कभी भूलते हैं, कभी नहीं भूलते। 24 घंटे चाहे सोकर जागे, चाहे कहीं से आए बेहोश रहे हो, किसी भी अवस्था से जागते हैं, हम अपने आप को याद रखते हैं प्रतिक्षण कि मैं हूं ये शरीर। तो इसको बार बार फीलिंग में ला करके ही हटाया जा सकता है। यहां पर इसीलिए कहते हैं कामात्मा वंचिता अबुधः, अबुधः माने अज्ञानवश, अज्ञानी है। यदि अज्ञान नहीं होता तो काम भी नहीं जागता। क्यों? क्योंकि हमने जब शरीर को अपना माना, तो शरीर माना तो फिर इसको खिलाने पिलाने संतुष्ट करने के लिए विषय तो चाहिए भोग करने के लिए, तो उन विषयों को फिर इंद्रियों के माध्यम से ढूंढा, और जब उन विषयों को ढूंढा तो फिर क्या हो गया, भोग करना शुरू किया। जब भोग किया तो भोग करते करते आसक्ति हो गई उसमें, जब आसक्ति हो गई तो फिर कामना हुई, फिर आसक्ति हुई, फिर कामना। ये परंपरा अनादिकाल से चल रही है, क्योंकि व्यक्ति की जहां आसक्ति होती है उसी की कामना करता है, दूसरे चीज की कोई कामना नहीं करता है। इस बात को समझ लीजिए, हम यदि संसार की कामना कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं और कामना संसार की आ रही है, तो इसका मतलब हमारी आसक्ति संसार में है, यदि नहीं होती तो हम कामना ही नहीं करते। तो ये बात को बार बार जब मन में डालेंगे तब जाकर के दिमाग में बैठेगी, और इसको कहते हैं यही असली तत्व ज्ञान है। दुनिया भर की चीज जान गए, पूरे शास्त्र समझ गए, आत्मानव नैव जानन्ति। शंकराचार्य जी एक बात बहुत अच्छी बोले कि चारों वेदों को पढ़ लिए, छंद उपनिषद सब पढ़ डाले, लेकिन अपने आप को नहीं जानते तो सब बेकार। जैसे दाल में यदि आप चम्मच डालते हैं, दरवी चम्मच, तो क्या होता है, वो दाल में जाती है, सबको चखाती है, लेकिन खुद नहीं जानती दाल का स्वाद। तो हम पूरे शास्त्र पढ़ते हैं तरह तरह के दुनिया भर के, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं। कई ज्ञानी लोग जान पाते हैं तो अपने आप को भगवान ही जान लेते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। अपने आप को आत्मा समझने की जगह पर वो अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं। अन्य लोग अपने आप को शरीर मानकर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इसीलिए देखिए, आप लोग कहेंगे कि ये बहुत इस्कॉन में चलता है तत्व ज्ञान, बार बार फिलॉसफी दर्शन। हमको ये बात समझ में यदि आ जाए तो आवश्यकता नहीं है। हमने ये बात समझा ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, तो फिर सुनो। यदि आपको समझ में आ गई होती तो कोई बात नहीं। कई लोग बोलते हैं अरे क्या वही चार नियम, वही 16 माला, वही घिसा पिटा, एक ही बात सब लोग बोलते हैं। अच्छा, ये एक ही बात है, लेकिन एक ही बात किसी को ठीक से समझ में नहीं आई। बात बहुत छोटी है, चार नियम है, 16 माला है, और मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कृष्ण का दास हूं, इतनी सी बात ही नहीं समझ में आ रही है। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक सुनते रहो, और कुछ होगा तो उसमें नहीं कहेंगे कि ये बार बार हो रहा है घिसा पिटा, वही दाल चावल खा रहे हैं, वही स्त्री पुरुष, वही पुत्र है, उसको बार बार डेली देख रहे हैं, बार बार उसकी कामना, अपनी कामना पूरी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि क्या वही मैं डेली कर रहा हूं। लेकिन 16 माला, चार नियम में, हाँ ये तो वही बात है, प्रभु जी बैठे तो फिर वही बात बोल दिए। यही बात यदि किसी को ठीक ठीक समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं फिर, है ना। तो इसीलिए तत्व ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तत्व ज्ञान का मतलब उसमें लग जाना, तत्व ज्ञान बस कृष्ण को समझना, उससे संबंध समझना, और यहां पर पुरंजन उन सब को भूल करके अपने आप को शरीर मान करके भोक्ता बन करके, वो भोगने की इच्छा करके अब वो ढूंढ रहा है विषयों को, और इतना आसक्त हो गया स्त्री में कि कहते हैं कि जो जो वो करती है वही वही करता है। भागवत में स्त्री का संग या स्त्री के संगी का संग और नरक का द्वार कहा। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषित संग, जो स्त्रियों का जो संग है वो क्या है, नरक का द्वार। अ कौन सी स्त्रियों का, जो अभक्त हैं। भक्त स्त्रियों में भी यदि सच में उच्च लेवल की स्त्रियां तभी उनका संग करना चाहिए, नहीं तो आपकी फिलॉसफी को कहीं वो दबा न दें। स्त्री लिखा है शास्त्रों में, तो आप लोग ये मत सोचना कि खाली स्त्रियों को ही हर बात में जोर दिया जाता है, या स्त्री इतनी घृणित नहीं है। लेकिन स्त्री क्या है, उसको बहकाया जा सकता है सरलता से, उसका इतना कोमल चित्त होता है, वो चाहे तो भगवान को जल्दी प्राप्त कर ले, लेकिन उसमें पुरुष का नियंत्रण होने से, गंदे पुरुष का नियंत्रण होने से, असत पुरुषों का कंट्रोल होने से वो स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, और स्त्री में पढ़ करके बस खेल समाप्त। इसीलिए कहा है भागवत में कपिल देव ने 31वें अध्याय का आप पढ़िए, 33 से लेकर के 39 40 45 तक संपूर्ण श्लोक वो खाली स्त्रियों के विषय में प्रारंभ किया कि ये जो हमारी बुद्धि जैसे स्त्री के रूप में यहाँ प्रदर्शित हो रही है। उन्होंने कहा कि सत्यम शौचम दया जितना भी है, सत्य शौच दया क्षमा लज्जा, ये सब का सब स्त्री के संग से, और नहीं तो स्त्री का जो संगी है उसके संग से, ये जैसे नष्ट होते हैं वैसे किसी भी प्रसंग से नहीं नष्ट होते हैं। बोला है कि जैसा मोह इनसे होगा और बंधन, वैसा किसी और अन्य प्रसंग से नहीं हो सकता है, इतना खतरनाक है। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमार रुक्षुः। कपिल देव ने बोला कि यदि कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो योषित स्त्रियों का संग न करे, न स्त्री संगियों का संग करे, यदि मुझको प्राप्त करना है तो, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति है जो स्त्री मैया माया से बचा हुआ, नारायण भगवान नर नारायण जी जो ऋषि तपस्या करते थे, क्योंकि जब इंद्र वहां पर भेजा अप्सराओं को नारायण भगवान को मोहित करने के लिए, तो उन्होंने उन स्त्रियों को देखकर, उनके हाव भाव देख करके अपने यहां पर चित्र बनाया गोदी यहां पर जांग में, और जैसा उन्होंने चित्र बनाया उससे वो सुंदर अप्सराएं निकली और उर्वशी आदि इतनी सुंदर थी कि वो जो आई थी अन्य अप्सराएं वो सब उनसे ही मोहित होकर के चक्कर खा गईं और वापस लौट गईं। बोली उनके पास तो हमसे ज्यादा सुंदर है, इंद्र को जाकर बताया। तो चित्रकारी का पहला जो चित्रकार है सबसे पहला वो भी नारायण भगवान ही है, जिन्होंने अपने जांग में ही चित्रकारी किया और उस चित्र को एक जीवित रूप प्रदान किया था। तो कपिल भगवान कहते हैं कि केवल नारायण को छोड़ करके बाकी सब स्त्री मैया माया से मोहित हो जाते हैं, और फिर पुरुष भी स्त्रियों से मोहित और स्त्रियां भी पुरुषों से मोहित, अब बस दोनों का बस संबंध बन गया, इसके बाद आगे चलते गए। केवल ये समस्या ब्रह्मचारियों और सन्यासियों को नहीं है स्त्रियों का मोह, कोई भी गृहस्थ स्त्रियों का रूप का आकर्षण है ये तो, और स्पर्श का, वो तो किसी को भी हो सकता है। ये स्त्री और पुरुष ये मत देखिए, इसके पीछे जो भोग करते हैं स्पर्श सुख और रूप का सुख, कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा स्पर्श होगा इसका। तो केवल रूप को हमको आकर्षण केवल स्त्री में नहीं होता है, बढ़िया सी कार निकल जाए, बढ़िया सा मोबाइल हाथ में आ जाए, उसका भी स्पर्श देखना चाहते हैं एक बार, बढ़िया महंगी वाली 10-12 करोड़ की कार छूना चाहते हैं, देखना एक बार निकल जाए रास्ते से, आदमी पीछे होकर जरूर देखता है। सुंदर स्त्री पुरुष निकल जाए तो सब उसको भी देखते हैं। तो ये रूप का आकर्षण और स्पर्श करने की जो इच्छा है, इस कारण से आकर्षण बना हुआ दोनों में। तो कुल मिलाकर के यदि कोई इसकी जड़ तक चला गया, अब भगवान ने भी ये बात कहा है कि जो अबुधा मतलब मूर्ख, हमको यदि कोई कहे कि तुम बहुत मूर्ख हो तो हम बुरा मान जाते हैं, लेकिन सच में हम लोग मूर्ख, क्योंकि हम देह को अपना मानते हैं, जब तक अपना मानते हैं तब तक हम मूर्ख हैं। उद्धव ने भगवान से पूछा कि कश्च मूर्खः, कौन मूर्ख है, तो भगवान ने कहा कि मूर्खो देहाद्यहं बुद्धि, मूर्ख कौन, तो जिसकी देह अबुधा कौन, अबुधा माने मूर्ख कौन, तो कहे जिसकी देह आदि में अहम बुद्धि की मैं ये देह हूं वो मूर्ख। अब हम लोग अपने स्तर पर विचार कर लें कि हमारी शरीर में आ सकती है कि नहीं, और हमको यदि कोई मूर्ख कह दे तो हम चिढ़ जाते हैं कि नहीं, खूब चिढ़ जाते हैं। हम अपने आप को झूठा साबित करना चाहते हैं विद्वान कि हम कुछ जानते हैं, हम किताबों की भाषा जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, हम आत्मा है, हमको आज तक रियलाइज हुआ ही नहीं। तो उसको फीलिंग लाना है, जिसको ये फील हो गया वो क्यों चिढ़ेगा किसी की बात से, कोई उसको कामी कहे, क्रोधी कहे, लोभी कहे, कैसा भी कहे। किसी पुलिस वाले को एक छोटा सा दरोगा है, यदि आप उसको जाकर के दरोगा ना कह करके ये जो क्या बोलते हैं उसको, यातायात पुलिस वाला होता है ना छोटा सा, हाँ सिपाही कह देंगे तो चिढ़ता है क्या कभी, या फिर उसको आईएएस नहीं कहते हैं आप उसको दरोगा को, यदि आप दरोगा कहेंगे तो नहीं चिढ़ता ना। एसपी है, यदि आप उसको एसपी को डीएम नहीं कहते तो थोड़ा चिढ़ता है वो एसपी अपने आप को एसपी ही कहलवाना चाहता है, और डीएम जब बनेगा तो डीएम कहलवाना चाहेगा। ऐसे जब हम कामी क्रोधी लोभी हैं लेकिन हमको यदि किसी ने कह दिया तो हम गुस्सा आ जाते हैं, हमारे अंदर भरा पड़ा, हम क्यों नहीं ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि हम सच में हैं, हमारे अंदर है कामना है। दो ही चीज हो सकती है कि कामना नहीं तो भक्ति, तीसरी चीज कोई एंटर कर ही नहीं सकती है। कामना भी बताया था कि वो पांच ही हो सकती हैं, आंख कान जीभा और त्वचा और नासिका, इन पांचों से ही जीव कामनाएं करता है। अब कोई कहे कि प्रतिष्ठा की भी एक कामना है, वो कौन सी है, वो प्रतिष्ठा की कामना कोई अलग नहीं है या अलग कामना नहीं होती है, वो प्रतिष्ठा चाहता किस लिए है, वो इन पांचों को भोग करने के लिए है। छठवीं कोई कामना नहीं होती पांच के अलावा, और इन पांचों कामनाओं में जो प्रतिष्ठा है कहते हैं प्रतिष्ठा की अलग कामना, प्रतिष्ठा की कामना तो इससे अलग है। मान चाहता, अरे मान आदमी चाहता क्यों है, ताकि लोग मेरा सम्मान करें, सबसे पहले मुझे भोग लगाएं, सबसे पहले मुझे प्रणाम करें, जो भी है सब कुछ मेरे भोग के लिए हो जाए, इसलिए तो प्रतिष्ठा चाहिए। तो इसलिए प्रतिष्ठा भी इसी के लिए चाहिए, पांचों कामनाओं के लिए। और जब व्यक्ति कामनाओं से आसक्त हो जाता है तो बार बार वंचित होता है, वंचित ठगा जाता है, और हमारी अवस्था यही है। अवस्तुता से जितना बड़ा ज्ञानी हो, ऐल उपाख्यान में जो पुरुरावा हैं उन्होंने एक इतनी बड़ी बात बोली अपने लिए, जब वो उर्वशी से आसक्त हो गए थे और उर्वशी जब उनको छोड़कर जाने लगी, चली गई, तो उसके पीछे पीछे उन्होंने इतना शोक किया, शोक करते करते उनको आत्मज्ञान सा होने लगा, और उन्होंने कह दिया कि किम तपसा, कि तपस्या से, ऐसी तपस्या से क्या फायदा, ऐसे ज्ञान से क्या फायदा, ऐसे वैराग्य से क्या फायदा, ऐसे श्रवण से क्या फायदा, एकांतवास से क्या फायदा, किम विविकते न वा, किम विविकते न मौने न वा। कहते हैं कि विविक्त माने एक स्थान में रहने से क्या लाभ, ऐसी तपस्या किम विद्या, ऐसी विद्या से क्या लाभ। कहते हैं स्त्री भीर यस्य मनोहृतम, जिसका मन स्त्री ने हर लिया उसकी विद्या उसकी तपस्या उसका ज्ञान सब बेकार हो गया, ऐसा फील कर रहे हैं बार बार कि देखो मेरे मन को स्त्री ने हर लिया, बताओ वो चली गई, उसके बाद भी मैं उसके लिए शोक कर रहा हूं। तो जिस व्यक्ति का मन स्त्री ने हर लिया हो उसके मतलब उसकी विद्या भी हरी गई, अभी परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंची। तो इसलिए तपस्या विद्या श्रवण जितनी भी चीजें हैं इन सब से केवल भगवान को जानना और भक्ति करना ही उद्देश्य है। तो यहां पर स्त्री धर्म के विषय में भी बताया प्रभुपाद ने तात्पर्य में कि स्त्रियों को बढ़िया आभूषण आदि दे करके प्रसन्न रखा जा सकता है, लेकिन स्त्री कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। जो भक्ति में नहीं आई, जो भक्ति में आ गई, जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो गया वो अपने आप को संकुचित कर लेती हैं, और जिनका ज्ञान प्रबुद्ध नहीं हुआ वो बस अंधे कुएं के जैसी हैं। उनको ऐसा कहा गया कि जैसे अंधा कुआं है जिसमें ऊपर से घास दिखाई पड़ रही हरी हरी, अब उसको पता ही नहीं कितना बड़ा है कितना गहरा है, और उसमें व्यक्ति गिर जाता है। दूसरी बात, अब अंधा कुआं मतलब इतना गहरा है उसको कहां तक पूरेंगे, वो कभी पुर आएगा ही नहीं, जिसका ज्ञान ही नहीं है हमको। तो परिवार को और स्त्री को ऐसा अंधे कुएं के समान बताया गया। अब ये ज्ञान हमको यदि प्रबुद्ध हो जाए, पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो ही हमारे ज्ञान का ये वास्तविक फल हो पाएगा। तो यहां पर कहते हैं कि जो वो बार 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 अपनी स्त्री के पास जाता था, वो जैसा करती थी वैसी करता था, तो इतना ज्यादा क्रीड़ा मृग हो गया, खिलौना बन गया था वो। वस्तुतः स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर के भगवत प्राप्ति करने का मार्ग अपनाना चाहिए। जैसे प्रथु महाराज और अर्ची ने अंत में क्या किया, दोनों गए वन में और दोनों ने वो भजन करते थे, वो उनकी सेवा करते थे। अंत में जब वो वहां पर दोनों ने समाधि लगा लिया, है ना, आप लोगों ने सुना चौथे स्कंद में कि कैसे अर्ची भी भगवत धाम चली गई। तो स्त्री पुरुष दोनों का संबंध कृष्ण से है। ये जो पति पत्नी जितने भी संबंध हैं, ये सब शारीरिक हैं। इनके धर्मों का केवल कोई कहे पालन करके भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो असंभव, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जैव धर्म नहीं है। पातिव्रत जो धर्म है वो भी जैविक धर्म नहीं है, जैव धर्म नहीं है, वो क्या है, शारीरिक धर्म है। भगवान का भजन करना एकमात्र जो है वो जैव धर्म है, लेकिन व्यवहार में जब तक व्यक्ति उस अवस्था तक नहीं पहुंचता है, तो स्त्रियों को भी अपने पति पुत्र आदियों की सेवा करते रहना चाहिए, लेकिन पति कभी भी अपातकी नहीं होना चाहिए, पातकी पातकी नहीं होना चाहिए, पापी। पापी पति की सेवा करने से वो भी नरक में जाएगी, उसको छोड़ सकती है वो स्त्री। यदि पति पातकी है, पापी है, या तो उसको भक्त बना दे यदि उसमें सामर्थ्य है, नहीं तो उसको उससे अलग हो जाए, ऐसा भगवान का ही वचन है। जब गोपियां आई भगवान के पास में, तो भगवान ने उनको थोड़ा प्रवचन किया पतिव्रत धर्म का, कि पति कैसा भी, रोगी हो, अंधा हो, काणा हो, दरिद्र हो, कुरूप हो, कैसा भी हो, लेकिन उन्होंने भगवान ने कहा कि लोकेप सुभिर पात, कि यदि लोक कल्याण या संसार का भोग चाहते हैं, संसार में नाम यश या भोग की इच्छा है, तो फिर अपातकी नहीं होना चाहिए वो पति, अपातकी नहीं होना चाहिए, पापी नहीं होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी दरिद्र ही क्यों ना हो उसकी खूब सेवा करो, मूर्ख भी क्यों ना हो, मूर्ख तक होने पर भी कर सकते हैं, लेकिन यदि पापी है, पाप कर्म प्रवृत्त है, तो मना ही है, उससे दूर हो जाओ तो ही फायदा है, नहीं आपकी भी भक्ति समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर ये जो काम में आसक्त होकर के भागवत में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, तीसरे स्कंद में, फिर भगवान जो ऋषभ देव, उन्होंने तो स्वयं कह दिया कि साक्षात नरक का द्वार है। इवन ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर आसक्त होकर के उनके पीछे पीछे दौड़ गए, इतना आकर्षण होता है। स्त्री को कहा है कि वो अग्नि के समान है, और पुरुष कैसा है, मक्खन के जैसा है, अग्नि के सामने मक्खन आएगा तो पिघल जाएगा। तो रूप का आकर्षण मनुष्य को पिघला देता है, और बाद में धीरे धीरे उसके साथ मिलकर के नरक का द्वार, जो सीधा द्वार जो कहा है नरक का द्वार, स्त्री। इसीलिए हमारे मंदिरों में भी चाहिए कि जो स्त्रियां हैं और पुरुष, दोनों में थोड़ा सा दूरी बनी रहे, और साथ साथ में जो आजकल जैसे कपड़ों की बात है, कपड़े भी वस्तु जैसे पुरुषों के लिए लाल सफेद कपड़े ऐसे निर्धारित हैं, ऐसी महिलाओं को भी मंदिर में आते समय निर्धारित कपड़े पहनना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। भड़काऊ कपड़े पहनने से पुरुष भी भड़कता है, स्त्रियां भी भड़कती हैं, और ये कंपटीशन चलता है, वो माता जी ने ऐसी साड़ी पहनी इतनी महंगी, मैं भी खरीदूंगी, वो प्रभु जी ने सिल्क का कपड़ा पहना मैं भी खरीदूंगा, ये जो कंपटीशन है चलने से बहुत घाटा है सबका। साधक हैं, साधक को एक ड्रेस में रहेंगे तो उसमें सबको लाभ होगा। इसीलिए कई संस्थाओं में ऐसा होता है कि सब लोग एक ही ड्रेस में आते हैं, जब साधना करने आते हैं तो एक ही प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, मैंने बहुत जगह देखा ऐसा, और उससे कुछ फायदा है, अधिक फायदा नहीं कि संपूर्ण फायदा है, एक क्योंकि एक ही रंग का रहेगा तो कंपटीशन किसी के साथ नहीं रहेगा, इनका भी लाल हमारा भी लाल, इनका पीला हमारा भी पीला, सब एक ही कलर के हैं तो पता नहीं चलेगा। अब रंगा बिरंगा होने से थोड़ी आंख में भ्रम पैदा होता है कि इनका कुछ ज्यादा सुंदर होगा, ज्यादा सुंदर, ज्यादा महंगा होगा, तो हम भी प्राप्त करें। इसलिए ऐसा यदि हो जाए तो बहुत अच्छा है, ना हो तो आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अबुधा नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान ऋषभदेव ने कहा कि जब तक यावन्न जिज्ञासात आत्म तत्वम, जब तक आत्म तत्व का जिज्ञासा नहीं करेगा तब तक क्या रहेगा, वो मूर्ख का पराभव होता रहेगा। पराभवस्तावन अबोध जाता है। कहते हैं कि पराभव किसका होता है, माया किसको पकड़ती है बार बार, जिसका आत्मज्ञान दृढ़ नहीं होता है। अब जिसको पद का पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, उनकी सेवा एकमात्र करना धर्म है, तो बस उसको दोबारा किसी भी प्रकार की माया नहीं पकड़ेगी। और जिसका ये ज्ञान दृढ़ नहीं है उसको बार बार पकड़ाएगी, बार बार छोड़ेगी, बार बार पकड़ेगी, ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। इसलिए पराभव वहां कहा कि अबोध जाता है। और जो अबोध जाता क्यों है, क्योंकि कभी जिज्ञासा किया ही नहीं है, इसलिए उसका बार बार जन्म होता है। और बार बार वो मूर्ख के जैसे अपने आप को शरीर मान करके वो क्रियाएं करता रहता है। तो इसीलिए स्त्रियों से बचना और पुरुषों से स्त्रियों को बचना, यदि भक्ति में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला स्टेप यही है। और यदि किन्हीं की स्त्रियां हैं जो गृहस्थ हैं, हम लोग जैसे यहां कई बैठे हैं, तो जितने भी गृहस्थ हैं उनको अब अपनी स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री तो स्त्री है आपकी, तो हमारे अंदर स्त्रियों को भोगने की इच्छा नहीं है, वो उसके उसके पीछे जो आनंद पाने की जो इच्छा वो है, तो हम उसलिए अलग अलग रूप रंग देख करके उसमें आसक्त होते हैं। कोई स्त्री से प्रेम नहीं करता है, कोई धन नहीं चाहता, ये बात भी मैं आप लोगों को बताया था कि कोई स्त्री किसी की स्त्री की कामना किसी को नहीं है, न धन की कामना है, उसके पीछे जो होने वाला आनंद है उसकी कामना है। और आनंद की कामना है तो गलत थोड़ा है, गलत है, गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आनंद श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हम उनको चाहते हैं। लेकिन गलती ये है कि हम गलत स्थान पर चाहते हैं। बस आनंद चाहना, कामना करना गलत नहीं है। वल्लभाचार्य जी ने लिखा है कि भक्ति मार्ग में जितने भी भौतिक कामनाएं हैं उनको हटाना नहीं, उनको कृष्ण की सेवा में लगा देना। यहां पर क्रियाएं जो है अलग से कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना, जो है सबको जैसे प्रभुपाद ने सिखाया। यदि ये माइक है, अब इसको कहें कि वैज्ञानिकों ने बनाया है, हम इसको छोड़ दें, इस माइक को प्रवचन करके लोगों को कृष्ण कथा करके सदुपयोग कर सकते हैं। ऐसी अन्य अन्य कामनाएं हैं, उनको उन कामनाओं में अपने आप को इंगेज करके भगवान की ओर ला सकते हैं, तो एक प्रकार है। तो इसीलिए ये ध्यान रहना चाहिए हमेशा, ये भूलना नहीं चाहिए। दो में से एक ही चीज रह सकता है मन में, दिमाग में डाल लेना चाहिए। कभी भी जिस व्यक्ति के लिए डिसीजन पक्का है कि संसार में ही सुख है और उसके बाद वो भक्ति कर रहा है, चार घंटा की साधना किया, पांच घंटा, और ये डिसीजन है कि अभी मजा तो कहीं और है, तो उसके लिए वो प्रयास करने जाता है फिर अलग से, तो सफलता प्राप्त इसीलिए नहीं हो रही है। और ये काम हम सब ने अनंत काल से अनंत बार किया है। ये डिसीजन यदि किसी का हो जाए कि कृष्ण में ही वो आनंद है, माया के विषयों में नहीं है, ये बार बार ऐसा अभ्यास करने से, सुनने से पक्का होगा, सोचने से। और जिसका यदि ये पक्का हो जाएगा, उस दिन से उसकी ट्रैक जो है वो सही ट्रैक पर चलने शुरू कर देगा। ये मन में पूरा बिठा के रखें, कृष्ण में आनंद नहीं है, बस साधना करना है, आनंद तो माया में ही है, माया के विषयों में, तब उसका लाभ नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसका ये चिंतन करके, डिसीजन ही गलत है आपका, जो पहला जो डिसीजन लेना वही गलत है, उसके बाद साधना शुरू किए हैं। और डिसीजन ये हो कि कृष्ण में ही आनंद है, उन्हीं में सुख है और उन्हीं में ढूंढना है, बस तो काम बन जाएगा। इसीलिए भगवान ने इस रथ को दिया है। ये रथ क्यों प्रदान किया है, कि ये रथ को बाहर की ओर नहीं दौड़ाना, अंदर के उसको सही तरीके से मोड़ लें और इस तरफ को जाएं, जिस तरफ भगवान हैं, बस ये रथ का उपयोग हो जाएगा। इसलिए संसार का उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। इन बातों को यदि कोई समझा, हम में से कोई भी समझ गया, तो उसका काम बन जाएगा। एक होता है उपयोग, एक होता है उपभोग। तो संसार का उपयोग करना है, यूज करके भगवत प्राप्ति करनी है। और कोई कहे उपभोग करें, तो उपभोग करते करते व्यक्ति समाप्त हो जाए, लेकिन उपभोग समाप्त नहीं होंगे, है कि नहीं। इसलिए पहाड़ से बड़ा पृथ्वी है, उससे बड़ा समुद्र है, उससे बड़ा आकाश है, आकाश से बड़ा परब्रह्म है, और उससे बड़ी तृष्णा कहते हैं, जो तृष्णा है उससे भी बड़ी होती है और उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए इसका उपयोग करना जो सीख गया बस उसका काम बन गया। तो यहां पर ये, यहां पर पुरंजन की जो बुद्धि है ये तामसिक राजसिक बुद्धि मिश्रित बुद्धि होने के कारण से ये उसको अभी घुमा रही है। यदि सात्विक बुद्धि होती तो भगवान में लगी होती, तो फिर यदि उसके पीछे पुरंजन जाता तो उसका भी काम बनता। तो यहां पर ऐसी पत्नी इसको नहीं मिली है कि जो इसको भगवान में लगा सके। तो इसलिए यदि जिसको ऐसी पत्नियां मिली हैं जिनको भक्ति में लगा रही हैं वो अपने आप को बड़ा धन्य समझें, और जिनको नहीं मिली हैं वो उसका प्रयास करें कि दोनों मिलकर के भक्ति करें जिससे लाभ हो। दोनों पूरा पश्चिम जाएंगे तो घर में कला होगी और भक्ति वक्ति कुछ नहीं होगी, समस्याएं ढेर सारी उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए भगवान का चिंतन अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयोः ये हमेशा होना चाहिए। इसी से अमंगल नष्ट होंगे और इसी से भगवत तत्व ज्ञान होगा, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही इस पुरंजन संपूर्ण पुरंजन उपाख्यान में जब 29वां अध्याय आएगा तो नारद जी जब उनको समझाएंगे प्रचेतस को, तो ये बातों को सबको खोलेंगे, तब बताएंगे कर्म ज्ञान सबसे श्रेष्ठ केवल भक्ति है, और जो भक्ति करता है उसका ही कल्याण होता है, अन्य अन्य मार्गों से केवल तुच्छ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुरंजन जो काम में आसक्त होकर के अज्ञान बस अपनी पत्नी का अनुसरण करता है, अब बस करता ही जा रहा है, वो जैसा जैसा करती है ये भी वैसा वैसा करता है और फंसते जा रहा है। तो आगे क्या क्या होता है वो आप लोग आगे श्रवण करेंगे। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरि प्रेमानंदे।